ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീത ചാപ്റ്റർ 14 ടെക്സ്റ്റ് നമ്പർ 16. ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാന ഗ്രഹണ കണക്കിലേ കൃപാ കി ആവശ്യകത ഹൈ ഓർ കൃപാ പ്രാപ്ത കണക്കിലേ അപ്നി സമസ്ത ഭൗതിക ഇച്ഛാഓ ആകാംക്ഷാഓ സോചോ ഓർ ദുർവിചാരോ കോ സൈഡ് മേ രഖ്കെ गुरु और गौरांग से प्रार्थना करके मंगलाचरण करेंगे ताकि जो अध्ययन करने वाले हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय. ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. वन्दे अहं श्री गुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം. ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാ സഹകളലിത ശ്രീവിശാഖാൻവിതാശ്ച. ഹേ കൃഷ്ണകരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധു ശരത്പതി ഗോപേശ ഗോപീകാന്ത ശ്രീരാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. सप्तकाञ्चनं गौरङ्गे श्रीराधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानुसूतिदेवी प्रणमामि हरिप्रिये. वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैतं गदाधरं शिवासुदी गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. श्रीमद् भगवद गीता माते की जय हो. कल भगवान श्री कृष्ण ने 14.14 में हमें बताया था, यदा सत्वे प्रवृद्धि तु प्रलयं याति देह भृत् तदुत्तम विदां लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते. बहुत सुंदर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जब कोई यदा सत्व प्रवृद्धेतु, जब सत्व गुण जिसके अंदर हो जाता है, विकसित हो जाता है, प्रलयम याति देहव्रत, तब अगर शरीरधारी इस देह को छोड़ता है या उसकी मृत्यु होती है, तदुत्तम विदाम लोकम, तब वो उत्तम लोकों को प्राप्त करते हैं. अमलान प्रतिपद्यते, जहाँ पर अमल होते हैं, शुद्ध लोक होते हैं, उनमें जाते हैं. तो आपका प्रश्न, अब यहाँ पर एक प्रश्न आया था जो मैं कल लेना सॉल्व नहीं किया था, आपसे क्षमा चाहती हूँ, लेकिन अभी इसको क्लियर करके ही आगे बढ़ते हैं, ठीक है. तो प्रश्न ये था कि जो सत्व गुण में मरते हैं वो उच्च लोक में जाते हैं, तो क्या वहीं पर ऐसे कार्य कर सकते हैं कि डायरेक्ट से कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन में जाएं या मृत्यु लोक में वापस आना अनिवार्य है। बहुत सुंदर प्रश्न है और जैसा कि मैंने आपको बताया कि भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता के अंदर हर प्रश्न का उत्तर दिया है, तो इस प्रश्न का उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने दिया है 18.16 में, चैप्टर नंबर 18 टेक्स्ट नंबर 16, सॉरी मेरे से बोलने में मिस्टेक हो गई, 18 नहीं 8.16, अध्याय नंबर 8 श्लोक नंबर 16। जो उर्दू पढ़ रहे हैं वो पेज नंबर 117 निकालें, जो हिंदी में पढ़ रहे हैं वो पेज नंबर 286 और इंग्लिश रीडर्स पेज नंबर 459 निकालें सबने। यहाँ पर देखिए 8वां अध्याय श्लोक नंबर 16 18.16 उसमें देखो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावृति नोर्जुन माम उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। आ ब्रह्म भुवना लोका, अब जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो हमारा भौतिक ब्रह्मांड है उसमें टोटल कितने लोक हैं, 14 लोक है। ये पृथ्वी सेंटर में है और ये लोक कहाँ है वो भी मैंने बताया था ना, जैसे कारण दक्षाई विष्णु की नाव से जो ब्रह्मा जी की जो डंडी कमल की जो निकल रही है ना डंडी, उसके अंदर सारे लोक है। और जो ऊपर वाला लोक है, अब देखो कमल की डंडी है तो सबसे ऊपर कौन सा लोक होगा, वहां पर वो कमल होगा ना, और कमल है उसमें कौन सा है लोक, ब्रह्मा जी का लोक है, यानी कि सबसे ऊपर वाला। अब ऐसे मैं आपको बताऊं, सेंटर में पृथ्वी है, ऊपर क्या है जनलोक तपलोक महलोक सिद्धलोक स्वर्गलोक गंधर्वलोक और ब्रह्मलोक, ये सब लोग ऊपर है, 7 लोग ऊपर है, और नीचे अतल वितल तलातल महातल रसातल और पाताल, ये सब 6 लोग जो है वो नीचे है। सेंटर में पृथ्वी है, अब ऊपर सबसे ऊपर कौन सा है, लाइन से जाए जनलोक तपलोक महलोक सिद्धलोक स्वर्गलोक और आखिर में क्या आएगा ब्रह्मलोक, और ब्रह्मलोक सबसे ऊपर है। उसके विषय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं आ ब्रह्म भुवनान, यानी ब्रह्मलोक तक भी अगर कोई पहुंचे भगवान लोकान पुनरावृति नो अर्जुन, पुनर मतलब बोलते हैं दोबारा, आवृति नो मतलब आते हैं अर्जुन, अर्जुन अगर कोई ब्रह्मलोक में हाईएस्ट तरीन जो बहुत ही ऊपर है उसमें भी यदि पहुंच जाता है तो वापिस आना पड़ता है। और आगे भगवान श्री कृष्ण ने बहुत ही सुंदर बताया माम उपैत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यति, लेकिन जो मुझे प्राप्त कर लेते हैं वो वापिस माम उपैत्य मतलब मुझे प्राप्त कर लेते हैं पुनर्जन्म दोबारा जन्म न विद्यते मतलब नहीं लेते हैं। यानी कि यहाँ पर बता रहे हैं कि इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम सारे लोग जो है वो दुखों के घर हैं, जहाँ जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है। ऐसा नहीं कि जन्म मृत्यु खाली ये हमारे पृथ्वी लोक पर ही होता है, सारे लोकों में जन्म मृत्यु होते रहते हैं, जन्म और मरण का चक्कर यहाँ पर साफ साफ बताया कि होता रहता है। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता। इसके तात्पर्य में श्रीला प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर कहते हैं, तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा, समस्त योगियों को चाहे वे कर्मी हो ज्ञानी हो या हठ योगी, अंततः भक्ति योग या कृष्ण भावनामृत में भक्ति की सिद्धि प्राप्त करनी होती है। यानी कि जब तक आप भगवान श्री कृष्ण के भक्त नहीं बन जाते हो तब तक मुक्ति की कोई संभावना नहीं है, चाहे आप हठ योगी बने कर्म योगी बने ज्ञान योगी बने या चाहे कोई भी बन जाए, लेकिन जब तक भगवान श्री कृष्ण की शरण में नहीं जाते, जब तक महामंत्र का उच्चारण नहीं करते, जब भगवान श्री कृष्ण से जब तक प्रेम नहीं करते, तब तक कृष्ण लोक में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तभी और जब भगवान की भक्ति करेंगे तभी वे कृष्ण के दिव्य धाम को जा सकते हैं, जहां से वे फिर कभी वापस नहीं आते। आगे बताते हैं श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, किंतु जो सर्वोच्च लोक सर्वोच्च भौतिक लोकों अर्थात देव लोकों को प्राप्त करते हैं उसका पुनर्जन्म होता है। जिस प्रकार इस पृथ्वी के लोग उच्च लोक को जाते हैं उसी तरह ब्रह्म लोक चंद्र लोक तथा इंद्र लोक जैसे उच्चतर लोकों से लोग पृथ्वी लोक में गिरते हैं। समझ में आया, यानी कि ये जो 14 लोक है ना इन्हीं में चक्कर घूमता रहता है, ये भौतिक लोग है, ये सारे लोग है ना, कभी हम अच्छे कार्य करते हैं, जैसे हम लोगों ने कल पढ़ा था ना, जिसने कहा यदि हम सत्वगुण में मरते हैं तो ऊपर लोकों में जाते हैं, यदि रजोगुण में मरते हैं तो ऐसे ही लोगों में हम लोग को जन्म लेना पड़ता है जो कर्मी होते हैं, और जो तमोगुण में मरते हैं वो है ना पशु योनियों में जन्म लेते हैं। तो इस तरह ये 14 लोक में जन्म मरण का चक्कर चलता रहता है, चाहे उच्च लोक हो, ब्रह्म लोक हो, चंद्र लोक हो, अचल वितल तलातल महातल रसातल पाताल जनलोक तपलोक महालोक, इधर उधर करते रहते हैं, कभी उधर भटकते रहते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने साफ साफ कहा, माम उपैत्यत कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यति, एक बार मुझे प्राप्त कर लो फिर नहीं किसी कहीं भी जन्म नहीं लेना पड़ेगा। और इस चीज को भगवान श्री कृष्ण ने एक और श्लोक में बहुत ही सुंदर ना बताया है, चैप्टर 9 टेक्स्ट नंबर 21, अगर पॉसिबल है तो प्लीज वो वाला निकालिए, पेज नंबर है उर्दू रीडर्स के लिए 354, पेज नंबर 356, और हिंदी पढ़ने के वालों के लिए 316, और इंग्लिश रीडर्स के लिए 513। श्लोक है चैप्टर 9 टेक्स्ट नंबर 21, बहुत ही सुंदर श्लोक है, मेरा प्रिय श्लोक है। भगवान कहते हैं, तीतं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मृत्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्म मनु प्रपन्ना गतागतं काम काम लभन्ते। तीतम भुक्त्वा, तीतम का मतलब होता है वो, मतलब जो अच्छे कार्य करते हैं ना, जिन्होंने अपने जो सत्वगुण में मरे हैं तो अच्छी जगहों पे पहुंच गए हैं, तीतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम, तो वो अच्छे लोग यानी स्वर्ग लोग जैसे लोकों में, विशालम मतलब बहुत टाइम तक, विशाल का मतलब होता है ऐसा नहीं कि वहां पर गए और फटाफट निकाल दिया, काफी टाइम तक उनको वहां पर रहने दिया जाता है। लेकिन आगे जाके क्या प्रॉब्लम हो जाती है, नेक्स्ट लाइन देखिए, क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विशन्ति, जब उनके पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो वापस उन्हें मृत्युलोक में आना पड़ता है। और आगे त्रयी धर्म मनु प्रपन्न, यानी कि जो तीन प्रकार के धर्म जो होते हैं ना, ये जो है ना तीन वेदों में जो धर्म लिखे हुए हैं, वेद तो ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद अथर्ववेद होते हैं, लेकिन पहले तीन वेद होते थे, अथर्ववेद बाद में उसको विभाजन किया गया तब, तो तीनों वेदों में जो वर्णित कर्म है कि ये अच्छे अच्छे कार्य हैं आप करो, तो उनको करने के बाद आपको अच्छे लोकों में जाने के लिए परमिशन तो दी जाएगी, लेकिन प्रॉब्लम ये है क्षीण पुण्य मृत्यु लोक मिशन थी कि पृथ्वी लोक पर आना अनिवार्य। अब मैं यहाँ पर आपको एक बात बता दूं कि बाकी जितने भी लोक है ना वो भोग लोक है, जैसे बाकी जितनी योनियां हैं वो भोग योनियां हैं, और ये जो मनुष्य जन्म की जो ये जो योनि है वो कर्म योनि है। इसमें आपको टोटल फ्रीडम है कि आप भक्ति करना चाहते हो। अभी देखो आप अभी भगवद गीता पढ़ रहे हो ना, अभी आज सैटरडे है, आपकी ऑफ है, अगर आपका दिल करे तो आप अभी तक सो रहे हो, लेकिन है ना आप भगवत गीता पढ़ रही, आपको पूरी फ्रीडम है। लेकिन आज घर में देखो दूसरे सारे सो रहे हैं, तो मतलब आपको कोई बाय फोर्स इसमें, ये जन्म जो है ना मनुष्य देह उसमें आपको वही करना पड़ेगा जो वही करना है जो आप चाहते हो। दूसरों में क्या, मुर्गे को देखो कोई नहीं बोलता कि सुबह, अभी अलार्म कोई रख के नहीं देता कि अभी सुबह हो गई आप उठ जाओ, लेकिन फिर भी वो भोग यो नहीं है, उसको उठना पड़ेगा। तो ये वाले जो ये जो हमारा जन्म है ना मनुष्य जन्म, उसमें आपको फ्रीडम दिया जाता है कि आप अगर चाहो, क्योंकि जीव जो है इसमें ये मनुष्य जन्म में क्या है, तटस्थ शक्ति है, तो उसकी मर्जी है वो भगवान की बहिरंग शक्ति के अंदर जाए, यानी माया में अंदर आप आनंद हासिल करना चाहते हो, या भगवान की अंतरंग शक्ति में जाना चाहते हो, वो पूरा आपको फ्रीडम दिया जा रहा है। लेकिन आगे बताया, गदागतम काम कामा लभन्ते, यानी कि इस प्रकार जब वे सत्वगुण में मरते हैं तो विस्तृत स्वर्ग लोक में इंद्र सुख को भोग लेते हैं, और उनके पुण्य कर्मों के खत्म होने पर इस मृत्यु लोक में पुनः लौट आते हैं। इस प्रकार जो तीन वेदों में सिद्धांत में दृढ़ रहते हैं, इंद्रिय सुख की घोषणा करते हैं, और उन्हें जन्म मृत्यु का चक्कर ही मिलता, यानी कि बारंबार आना पड़ता है। और यही श्री प्रभुपाद जी सुंदर बताते हैं, तो थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं। श्री प्रभुपाद की जय हो। श्री गोपाल जी कह रहे हैं जो स्वर्ग लोग प्राप्त करते हैं उसे दीर्घ जीवन तथा विशेष सुख की श्रेष्ठ सुविधाएं प्राप्त होती हैं, तो भी उसे यहाँ वहां पर सदा नहीं रहने दिया जाता। यानी कि उच्च लोक में आप जाओगे तो आपको कंटिन्यूअस नहीं रहने दिया जाएगा, पुण्यों कर्मों के फलों के क्षीण होने पर उसे पुनः इस पृथ्वी लोक पर भेज दिया जाता है। जब पुण्य क्षण क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशन्ति, जब पुण्य कर्म खत्म हो जाएंगे तो जाओ वापस से पृथ्वी लोक में और जाके वहां पर पुण्य और कमाओ, तो फिर आप वापस से अच्छे लोक में जाओ। लेकिन आना पड़ेगा, प्रॉब्लम है ना, इसलिए जाना कैसी जगह पर जाइए, तो वो भगवान श्री कृष्ण बताते हैं चैप्टर 8 टेक्स्ट नंबर 15 उर्दू रीडर्स 317 हिंदी रीडर्स 286 और इंग्लिश रीडर 459। बहुत ही सुंदर श्लोक है ये, तो बहुत ही अच्छा है, आपको पढ़ेंगे तो मजा आएगा। 8.15 भगवान कहते हैं मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। बहुत ही सुंदर भगवान कहते हैं यदि ये बार बार के चक्कर से बचना चाहते हो, भटकने से बचना चाहते हो, तो एक उपाय है माम उपेत्य मुझे प्राप्त कर लो। फिर पुनर्जन्म दोबारा जन्म, वो भी किधर, दुःखालयम् अशाश्वतम्, इस भौतिक ब्रह्मांड में जितने भी लोग हैं उनकी एक ही अस्तित्व है, उसका एक ही शाश्वत सत्य है कि वो दुःखालय है। इस संसार में चाहे आप राजा भी बनकर क्यों ना आओ तो भी आपको दुख भोगना पड़ेगा, चाहे किसी भी कंडीशन में आप आओ। दुःखालयम् अशाश्वतम् भगवान का स्टेटमेंट है कि मैंने ये संसार दुख देने के लिए बनाया है। तो भगवान कहते हैं जब मुझे प्राप्त कर लोगे तो फिर इस दुखों से भरे तकलीफ वाले इस जगत में वापस नहीं आना पड़ेगा। नाप्नुवन्ति महात्मानः, जो महात्मा हो जाते हैं वो इस में मुझे प्राप्त कर लेते हैं, वो वापस नहीं आते। क्यों नहीं आते, संसिद्धिं परमां गता, क्योंकि उन्होंने परम सिद्धि को प्राप्त किया है। भगवान कहते हैं मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी है, देखो खाली भक्त ही ऐसा कर सकता है, और भक्त का मतलब होता है जो तीनों गुणों से ऊपर हो, शुद्ध सत्व में जो स्थित होता है, जो अपने सारे कार्यों में कृष्ण की खुशी के लिए सारे कार्य करता है, अपनी इंद्रिय तृप्ति को सेंटर में नहीं रखता, उससे भक्त कहते हैं। यानी अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माध्यनावृतम अनुकूल कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तम। भक्ति का अर्थ है कि आपके अंदर अन्य कोई कामना नहीं हो, चाहे वो ज्ञान की हो, चाहे वो सकाम कर्म की हो, कोई कामना नहीं हो, अनुकूल है ना कृष्णानु, मेरा कृष्ण कैसे खुश होगा, इसको कहते हैं भक्ति। और जो भक्ति योग करके भगवान को प्राप्त करते हैं, कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते हैं, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो गई है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी क्यों कह रहे हैं कि चूंकि यह नश्वर जगत जन्म जरा मृत्यु और व्याधि के क्लेशों से पूर्ण है, अतः जो परम सिद्धि प्राप्त करता है और परम लोक यानी कृष्ण लोक गौलोक वृंदावन धाम को प्राप्त करता है, वह वहां से कभी वापस नहीं आना चाहता। इस परम लोक को वेदों में अव्यय अक्षर तथा परम गति कहा गया है। दूसरे शब्दों में यह लोक हमारी भौतिक दृष्टि से परे है और अवर्णनीय है, यानी कि उसको बताया नहीं जा सकता। क्यों नहीं बताया जा सकते कि वहां पर क्या है, क्योंकि कोई आया ही नहीं, कोई आया तो बताया ना कि कैसा लोक है, किंतु यह चरम लक्ष्य है। जाने के लिए कोशिश करनी है तो उधर ही जाओ, क्योंकि हमारा चरम लक्ष्य जो हमारा मेन गोल है वो उसी लोक को प्राप्त करना है, क्योंकि भगवान ने कहा है कि उस लोक में जाने के बाद आपको वहां से निकाला नहीं जाएगा, वे केवल कृष्ण तथा कृष्ण का सामीप्य वहां पर प्राप्त होता है और वहां पर केवल भक्त ही जा सकते हैं, अन्य कोई नहीं। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है और यही जीवन की सबसे बड़ी सिद्धि है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण सगुणवादी भक्तों का विशेष रूप से उल्लेख हुआ है, यानी कि जो भगवान के सगुण भक्त हैं, जो भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं, वही कृष्ण लोक को प्राप्त करते हैं और यह परम सिद्धि है और यह सर्वोच्च सिद्धि है, जहां पर जाने के बाद वापस नहीं आना पड़ता है। बाकी आप किसी भी ऊंचे लोक में चले जाओगे तो वापस आना पड़ेगा। समझ में आ गया? अब आज का श्लोक पढ़ते हैं, काफी टाइम हो गया। अपने श्लोक पर आ जाइए, चैप्टर 14 टेक्स्ट नंबर 16। भगवान कहते हैं, कर्मणा सुकृतस्याहु सात्विकं निर्मलं फलम् रजस्तु फलं दुःखं अज्ञानं तमसः फलम्। कर्मण सुकृत स्याहु, कर्मण मतलब कर्मों का, सुकृत मतलब पुण्य कर्म जो होते हैं, आहु कहा गया है सात्विकम सात्विक, निर्मलम शुद्ध फलम, यानी कि जो पुण्य कर्म होते हैं, जो हम अच्छे कार्य करते हैं तो उनका फल शुद्ध होता है और सात्विक कहलाता है। रजस्तु फलम दुखम, लेकिन जो रजोगुण में किए जाते हैं, तकलीफ दे कार्य होते हैं, उनको उनका फल होता है तकलीफ, यानी कि जो भी रजोगुण में आप कार्य करोगे ना, उसको काम जो होंगे ना उस टाइम पर जो कर रहे होंगे उससे दुख मिलेगा। और अज्ञानम तमसा फलम, और तमोगुण में जो भी कार्य करेंगे वो अज्ञान में हो रहे होते हैं, यानी कि पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है, अच्छे कार्य करेंगे तो फिर उसका शुद्ध फल मिलेगा और सात्विक कहलाता है। लेकिन रजोगुण में संपन्न कर्म का फल दुख होता है, रजोगुण में जो भी हम कार्य करेंगे उसका फल हमें दुख मिलेगा और तमोगुण में किए गए कर्म मूर्खता में प्रतिफलित होते हैं। श्री प्रभुपाद जी बहुत सुंदर समझाएंगे तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय हो। श्री प्रभुपाद जी कह रहे हैं, सत्वगुण में किए गए पुण्य कर्मों का फल शुद्ध होता है, अतएव ये मुनिगण जो समस्त मोह से मुक्त हैं सुखी रहते हैं, यानी कि वो सत्वगुण में कार्य कर रहे होते हैं तो एकदम सेटिस्फाई रहते हैं, क्योंकि अपराध नहीं कर रहे होते हैं और किसी का बुरा नहीं चाह रहे होते हैं, अच्छे कार्य कर रहे होते हैं तो वो हमेशा सुख का अनुभव कर रहे होते हैं। लेकिन रजोगुण में किए गए कर्म दुख का कारण है, यानी कि भौतिक सुख के लिए जो भी कार्य किया जाता है उसका विफल होना निश्चित है, यानी कि हम जो भी कार्य भौतिक सुख के लिए इंद्रिय तृप्ति करते हैं उसका कोई ना कोई रिएक्शन होता है। जैसे उदाहरण, यदि कोई गगनचुंबी प्रसाद बनवाता है, यानी कि बहुत बड़ी अगर वो कोई इमारत बनवाता है, बहुत बड़ी बिल्डिंग बनवाता है, तो उसके बनने के पूर्व अत्यधिक कष्ट उठाना पड़ता है। जो भी कार्य आप करते हो घर में, देखो घर बनाने के लिए भी कितना मेहनत करनी पड़ती है, गाड़ी लेने के लिए, हर कार्य करने के लिए बहुत ज्यादा परिश्रम करना पड़ता है, बहुत ज्यादा तकलीफ। इसे बताया गया संसार में रजोगुणी व्यक्ति चाहे कितना ही सक्सेस क्यों ना हो, उसको अपने कार्य करने के लिए परिश्रम करना पड़ता है। ऐसे बताया गया, नीति शास्त्र कहता है, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा, यानी कि अगर आप सिंह भी बन जाओ, अगर आप जंगल के राजा भी बन जाओ, फिर भी अगर आप रजोगुण में कुछ आप हासिल करना चाहते हो तो कोई हिरण आके ऐसा नहीं सोचेगा कि भाई राजा सो रहा है तो या बैठा हुआ है आराम से, मैं उसके माउथ में चला जाता हूँ, भले वो खाए, है तो राजा ना, उसको अपना शिकार ढूंढने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ेगा। तो जो रजोगुणी लोग होते हैं, श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं, अत्यधिक कष्ट उठाना पड़ता है, मालिक को धन संग्रह के लिए कष्ट उठाना पड़ता है और प्रसाद बनाने वाले श्रमियों को शारीरिक श्रम करना पड़ता है, यानी कि अब जो बनवा रहा है मालिक भी पैसे जमा करने के लिए है ना इतना सारा कष्ट उठाता है, जो काम कर रहे हैं जो वर्कर्स होते हैं उनको भी है ना अपना शारीरिक श्रम करना पड़ता है। इस प्रकार कष्ट तो होता ही है, अतः भगवत गीता का कथन है कि रजोगुण के अधीन होकर जो भी कर्म किया जाता है उसमें निश्चित रूप से महान कष्ट भोगना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण साफ साफ बोलते हैं, रजस्तु फलम दुखम, कि रजोगुण का फल क्या होगा, दुख होगा, आपको करने के टाइम पर दुख मिलेगा, परिश्रम करना पड़ेगा, कठिन मेहनत करनी पड़ेगी। इससे यह मानसिक तुष्टि हो सकती है कि मैंने यह मकान बनवाया या इतना धन कमाया, लेकिन यह कोई वास्तविक सुख नहीं है, यानी कि उसे जब अर्जित हो जाती है ना चीज, तो फिर दुख मतलब मेंटली वो एकदम थोड़ा सा सेटिस्फाई हो जाता है कि मैंने देखो ये मेरा बन गया। जब बन जाने के बाद सुख मिलता है, लेकिन वास्तविक तो इतना ज्यादा हम लोगों ने दुख उठाने के बाद ही उस चीज को प्राप्त किया है ना। कोई भी चीज आप रजोगुण में रहकर करते तो उसमें दुख तो मतलब वो टाइम करने के टाइम पर हमें दुख मिल रहा होता है। और जो ये मानसिक, यहाँ पर भी श्रीला प्रभुपाद जी बोलते हैं यह कोई वास्तविक सुख नहीं है, क्योंकि जो प्राप्त हुआ है वो भी आगे चल के दुख ही देने वाला है। जो जो आज आज तक हमने कमाया है ना, हम हमारा उसी में से हमें दुख, हमारा अपना जो है वही हमें दुखी करता है। आज देखो बच्चा कितनी मुश्किल से मिलता है किसी को, पूरी इतना मेहनत करना पड़ता है बच्चा पैदा करते हैं, और फिर बाद में अब देखो दूसरों के बच्चे जो जिनसे हमारा कोई सरोकार नहीं, जिनको प्राप्त करने के लिए हमने कोई मेहनत नहीं की, वो बाहर कोई गलत हरकत कर रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं या कोई भी गलत काम कर रहे हैं, तो हमें उससे कोई दुख नहीं मिलता। लेकिन हमारा बच्चा फेल होकर भी आ जाए तो फिर हमें कितनी दुखी, यानी कि जो हमारी चीजें हैं जो हमने मेहनत से प्राप्त की हैं, अब देखो किसी और के घर में छत टूट जाती है, पानी गिरता है तो हमें कोई, हमारे घर में अगर कोई कुंडी दरवाजा खराब हो जाता है या कुछ हो जाता है, चोरी हो जाती है कुछ, तो हमें कितना दुख, यानी कि हमारी चीज जो हमने इतनी मेहनत से कमाई है वो वास्तविक में हमें रजोगुणी है, इसलिए हमारे दुख का कारण कहीं ना कहीं से बनती ही है। जहाँ तक तमोगुण का संबंध है, कर्ता को कुछ ज्ञान नहीं रहता, अतएव उसके समस्त कार्य उस समय दुखदायक होते हैं और बाद में उसे पशु जीवन में जाना पड़ता है। अब तमोगुण तो शुरू से लेकर अंत तक अंधकार ही है, क्योंकि जिस टाइम पर कर रहे हैं तो उस टाइम पर भी कोई सुख नहीं है, बाद में भी उसको कोई सुख नहीं मिलता। पशु जीवन सदैव दुखमय है, यद्यपि माया के वशीभूत होकर इसे समझ नहीं पाते। यानी कि वो जो पशु होते हैं ना, उनका जीवन तो दुखमय ही होता है। अब जाहिर सी बात है, गधे हैं, गधा बेचारा कितना दुखी होता है, उसको पता ही नहीं होता। वो तो सारा दिन धोबी के लिए काम कर रहा होता है, कपड़े लेकर जाता है, लेकर आता है, कंटिन्यूस सेवा कर रहा होता है, उसको मार पड़ती है कितनी सेवा के बदले में भी उसको खाने नहीं दिया जाता। हालांकि वो अगर थोड़ी सी अक्ल यूज करे ना, गधा है ना, अक्ल नहीं है उसके पास, तो वो थोड़ी सी अक्ल यूज करके अगर धोबी के चंगुल से निकल जाए तो घास तो उसको कहीं पर भी खाने के लिए मिल जाएगी, लेकिन फिर भी वो गधा है। तो पशु जीवन यहाँ पर बोलते हैं श्री प्रभुपाद जी इतना अच्छा बता रहे हैं कि सदैव दुखमय होता है, यद्यपि उसे पता नहीं चलता है कि मैं दुखी हूँ। पशुओं का वध भी तमोगुण के कारण है। पशु वधिक यह नहीं जानते कि भविष्य में इस पशु को ऐसा शरीर प्राप्त होगा जिससे वह उनका वध करेंगे। ये प्रकृति का नियम है, यानी कि जो हम करेंगे बाद में हमारे जिसके साथ हम जैसा सलूक करेंगे बाद में हमें वैसा करना पड़ेगा। श्रीला प्रभुपाद ने एक बहुत ही प्यारी पुस्तक है, छोटी सी, मुझे अच्छी लगती है, मेरा दिल भी करता है कि मैं कभी आप लोगों के साथ शेयर करूं। उसमें है प्रकृति का नियम, उसमें जो प्रकृति के नियम है ना वो लिखे गए, उसमें ये है मेन बात कि आप जैसा करोगे आपके साथ ऐसा किया जाएगा, रिजल्ट में आपको वो मिलेगा, क्योंकि एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन। मानव समाज में यदि कोई किसी मनुष्य का वध कर दे तो उसे प्राण दंड मिलता है, यह राज्य का नियम है। अज्ञानवश यह लोग यह अनुभव नहीं करते कि परमेश्वर द्वारा नियंत्रित एक पूरा राज्य है। प्रत्येक जीवित प्राणी जो है वो परमेश्वर की संतान है और उन्हें एक चींटी तक का मारा जाना सही नहीं है। यानी कि देखो राजा ये तो जो लोग को मारते हैं ना, मतलब मनुष्य को जो मारते हैं उनको तो दंड दे देते हैं, बोलते हैं हाँ इस मृत्यु हत्या का दंड। लेकिन वो ये नहीं जानते कि ये जो पूरा संसार भगवान श्री कृष्ण ने बनाया है, इसके लिए भगवान श्री कृष्ण 9.17 में कहते हैं, पिता हमस्य जगतो, मैं संपूर्ण सृष्टि का पिता हूँ। तो भगवान सारे लोग के लिए बोल रहे हैं, खाली ये नहीं बोलते सर्व योनिषु कौन्तेय, जितने भी योनियां हैं उनके लिए कह रहे हैं। तो फिर अब कोई एक श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं जो भगवान है, प्रत्येक जीव प्राणी भगवान की संतान है और एक छोटी सी शुद्र चींटी तक का मारा जाना वो बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, इसके लिए मनुष्य को दंड भोगना पड़ेगा। यदि वो पशु वध करते हैं तो उन्हें इसका पूरा पूरा उत्तरदायित्व निभाना पड़ेगा, पूरा पूरा उनको हिसाब चुकाना पड़ेगा। अतएव स्वाद के लिए पशु वध में रत रहना घोर अज्ञानता है। श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं मनुष्य को पशुओं के वध की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ईश्वर ने उनकी इच्छा अच्छी उन अनेक अच्छी वस्तुएं प्रदान कर रखी हैं। कोई जरूरत ही नहीं है पशुओं को मारने के लिए। यदि कोई किसी कारण से मांस आहार करता है तो यह समझना चाहिए कि वह अज्ञानवश ऐसा कर रहा है और अपने भविष्य को अंधकारमय बना रहा है। श्री प्रभुपाद ने साफ साफ बता दिया कि मांस आहार करने वाला अज्ञानवश अपने भविष्य को अंधकारमय बना रहा है, यानी कि वो तमोगुणी कार्य कर रहा है और बेशक उसे मनुष्य से पशु योनि में भेज दिया जाएगा। समस्त प्रकार के पशुओं में से गौवध यानी कि जो गौ हत्या होती है सर्वाधिक अधम है क्योंकि गाय हमें दूध देकर सभी प्रकार का सुख प्रदान करने वाली है। गौवध एक प्रकार से सबसे अधम अधम कर्म है, यानी कि सबसे बुरा कार्य जो है वो क्या है, पशुओं की हत्या करना। और उनमें भी यदि कोई गौ हत्या करता है तो सबसे ज्यादा अधिक बहुत ही खराब कार्य है, अधम कार्य है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद 1.4.64 में तो क्या लिखा है, ऋग्वेद में गोभी पीड़ित मत्सरम, यानी इससे सूचित होता है कि जो व्यक्ति दूध पीकर गाय को मारना चाहता है वह सबसे बड़ा अज्ञान में रहकर कार्य करता है, यानी कि ये बहुत बड़ा अज्ञान वाला कार्य है, तमोगुण वाला कार्य है, उसका बहुत बुरा अंजाम भी भुगतना पड़ेगा। वैदिक ग्रंथ में विष्णु पुराण 1.19.65 में एक प्रार्थना दी गई है जो इस प्रकार है, नमो ब्रह्मणाय देवाय गौ ब्रह्मण हिताय चे जगद्दिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। यानी हे प्रभु, आप गायों तथा ब्राह्मणों के हितैषी हैं और आप समस्त मानव समाज तथा विश्व के हितैषी हैं। यानी तात्पर्य यह है कि इस प्रार्थना में गायों तथा ब्राह्मणों की रक्षा का विशेष उल्लेख किया गया है। ब्राह्मण आध्यात्मिक शिक्षा के प्रतीक है और गाय महत्वपूर्ण भोजन की, अतएव इन दोनों जीवों यानी ब्राह्मणों तथा गायों की पूरी पूरी रक्षा प्रदान की जानी चाहिए। यानी कि ब्राह्मण नहीं होंगे तो हम शिक्षा कैसे प्राप्त करेंगे, और गाय जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भोजन हमें, जैसे दूध से बहुत सारी चीजें बनती हैं वो सब हमें प्रोवाइड करती हैं। और वास्तव में शास्त्रों में तो ये कहा गया कि केवल गाय का दूध ही पीने योग्य है, बाकी जो हम गाय जो है वो माता है, भैंस तो भैंस है तो भैंस का दूध नहीं पीना चाहिए। लेकिन हमारा ये दुर्भाग्य है कि हम लोगों को यहाँ पर है ना गाय का दूध नहीं होता है, हमें नहीं मिल रहा है तो मजबूरन पीना पड़ता है। लेकिन गाय का दूध ही पीने योग्य है और गाय बहुत महत्वपूर्ण पशु है, इसलिए उसकी हत्या नहीं, उसका उनकी सुरक्षा करनी चाहिए। और इसीलिए भगवान को कहा गया कि आप क्योंकि गौ और ब्राह्मण की रक्षा करने वाले हैं इसलिए हम आपको प्रणाम करते हैं। और आगे है श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि यही सभ्यता है, यही सभ्यता की वास्तविक प्रगति है कि हमें क्या करना चाहिए कि गौ और ब्राह्मणों की रक्षा करनी चाहिए। आधुनिक मानव समाज में आध्यात्मिक ज्ञान की उपेक्षा की जाती है और गौवध को प्रोत्साहन किया गया, क्यों, क्योंकि आधुनिक समाज पशु बनता जा रहा है, शास्त्र को अध्ययन नहीं करता। अब कोई बोले कि भाई पता ही नहीं था तो कैसे पता नहीं था, पढ़ो ना शास्त्र तुम्हारे लिए लिखे गए, ये इसमें लिखा हुआ है कि साफ साफ के नहीं करना चाहिए, फिर भी करते हैं। और फिर जब यमराज आएगा तो बोलेंगे पता ही नहीं था, तो बोले बेटा पता नहीं था तो भी भुगतना पड़ेगा। यदि कोई किसी की हत्या कर देता है और बाद में कानून को बोलता है कि मुझे नहीं पता था, तो कानून क्या उसे बख्श देगा? उसी तरह से यदि कोई गौ हत्या करता है, पशु हत्या करता है, तो शास्त्र में साफ साफ लिखा गया कि उसकी बदली में उसको भुगतना पड़ेगा, उसको पनिशमेंट दी जाएगी। ऐसा नहीं कि यमराज को बोलेंगे कि पता नहीं था तो यमराज छोड़ देंगे। तो यहाँ विष्णु प्रभुपाद जी बोलते हैं इससे यही ज्ञान होता है कि मानव समाज विपरीत दिशा में जा रहा है और अपनी भर्त्सना का पथ प्रशस्त कर रहा है। यानी कि इससे तो उनकी भर्त्सना उनकी निंदा होगी कि ऐसा मानव समाज मनुष्य बनकर पशुओं के, ऐसा शास्त्र में आता है मनुष्य रूपेण मृगारचरण, ये मृग की आचरण है, ये पशुओं के आचरण है कि जब दिल करे जिसको खाओ काटो मारो, ये जो भी ट्रैफिक चल
मतलब जो भी लाइट चल रही है रोड क्रॉस कर लो, कुत्ते को कुछ नहीं कहा जाएगा, किसी जानवर को कुछ नहीं कहा गया। मनुष्य को देखना होता है कि क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है। तो यहाँ पर कहा गया है कि मनुष्य होकर वो यदि पशुओं जैसा आचरण करते हैं तो उन्हें मनुष्य नहीं रहना दिया जाएगा, उन्हें पशु बना दिया जाएगा। भगवान बोलते हैं पशुओं जैसी जानवरों जैसी हरकत करते हो तो जानवर के रूप में रहकर करो, क्यों मनुष्य चोले को आप है ना खराब कर रहे हो, क्यों मनुष्य योनि को बदनाम कर रहे हो। जानवर जैसे काम करने तो जानवर की योनि में जाके करो, जानवर खाना ये मनुष्य की सभ्यता नहीं है। आगे बताते हैं, जो सभ्यता अपने नागरिकों को अगले जन्मों में पशु बनने के लिए मार्गदर्शन करती है वह निश्चित रूप से मानव सभ्यता नहीं है। श्रील प्रभुपाद कितना अच्छा बता रहे हैं कि वो मानव सभ्यता है ही नहीं जो कि आपको अगले जन्म में पशु बनने के लिए प्रेरित कर रही है, बल्कि आपको अगला जन्म प्राप्त ना हो इसके लिए जो प्रेरित करे वह है मानव सभ्यता। निस्संदेह आधुनिक मानव सभ्यता रजोगुण तथा तमोगुण के कारण कुमार्ग पर जा रही है, गलत रास्ते पर जा रही है। यह अत्यंत ही घातक युग है और समस्त राष्ट्र को चाहिए कि मानवता को महानतम संकट से बचाने के लिए कृष्ण भावनामृत की सरलतम विधि प्रदान करें। शिला प्रभुपाद जी बहुत अच्छा सॉल्यूशन बता रहे हैं कि यदि सब लोगों को कृष्ण भावनामृत का आस्वादन करने का मौका दिया जाएगा, जगह जगह पर भगवान कृष्ण के इन शास्त्रों का प्रचार किया जाएगा तो फिर आसानी से इन समस्त संकटों से बचा जा सकता है। इसके अतिरिक्त और कोई अन्य उपाय नहीं है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।